अख्तर साहब रहमत का बहुत ही खूबसूरत शेर याद आ रहे थे। बयान अदना सा अगर फैज़े पीरे मुगां कर दूं, यानी शेख का फैज़ बयान अगर कर दूँ, बयान अदना सा नहीं थोड़ा सा मामूली सा फैज़, यानी बहुत फैज़ मिला है हमें लेकिन मामूली फैज़ बता रहे हैं। बयान अदना सा अगर फैज़े पीरे मुगां कर दूं, सजदे में सर रख दूं, ज़मीन को आसमां कर दूं, सजदे में सर रख दूं, ज़मीन को आसमां कर दूं। क्या मतलब कि शेख की सोबत की बरकत से अल्लाह ने वो मुकाम दे दिया कि जब मैं सजदे में जाके अल्लाह से कुछ भीख मांगूंगा तो इंशाअल्लाह ताला लेके उठूंगा, ये मुराद है लेके उठूंगा। तो ये ताल्लुक मामला ऐसा शेख से हासिल करना चाहिए। आज शेख की जो मामलात होते हैं वो बड़े कच्चे और कमज़ोर लगा नज़र आते हैं मुरीदीन के जो नियतों की वजह से। तो आजकल शेख जो है सिर्फ वो ज़्यादातर के जो सब नहीं लेकिन अक्सरियत सिर्फ कैश के लिए शेख को रखा हुआ है, कैश आ जाए बस, कहीं मना नहीं। दुनिया की भी आप दुआएं करवाएं, अल्लाह माली मुश्किलात सबकी दूर करे, सब कुछ करे, लेकिन सारी चीज़ों के ऊपर ताल्लुक माल्ला को अहमियत देनी चाहिए। ये है सही मायनों में शेख की रफाकत का हक अदा करना, बैत का हक अदा करना, सोबत में आने का हक अदा करना। क्योंकि दुनिया के जितने फ़ायदे वो अगर किसी को मिल भी गए शेख के ज़रिए से, उसकी दुआओं से, सोबत से, जिस तरह से भी, लेकिन मौत के साथ ही वो सारे दुनियावी फ़ायदे सब कलदम हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सूरज निकलता है ना तो तारे सब छुप जाते हैं, फजर में सूरज टुलू हुआ और सारे तारे छुप गए, रोशनी आ गई। तो इसी तरह मौत के साथ ही सारी चीज़ें छुप जाएंगी, दो चादरों में कफन की जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सोबत शेख से, किसी अल्लाह वाले की सोबत से अगर ताल्लुक माल्ला हासिल कर लिया तो बस वो ताल्लुक माल्ला का चिराग कफन के साथ, जनाजे के साथ कब्र के अंदर तक जाएगा। ये है असल फ़ायदा, असल चीज़ उठानी थी, जो फ़ायदा शेख से उठाना था वो ये था भाई। हज़रत पाला इसलिए फरमाते थे अल्लाह ऐसा प्यारा है कि जो ज़मीन के ऊपर जब तक साथ रहोगे उस वक्त तक साथ देगा, और जब ज़मीन के अंदर चले जाओगे दुनिया लात मार के फेंक के चली जाएगी सारे प्यारे रिश्ते, उस वक्त ज़मीन के नीचे भी मौला साथ देगा, ज़मीन के ऊपर भी साथ देगा, ज़मीन के नीचे भी साथ देगा। अल्लाह ऐसा प्यारा है। तो अल्लाह से ताल्लुक़ को गहरा करना चाहिए। बहुत से लोग खुश हो जाए, किसी को नौकरी नहीं मिली दुआ की, किसी को नौकरी मिल गई, किसी का कारोबार नहीं चला बिलफर्ज कारोबार चल रहा, खुश हो गए, बहुत खुश हुए, भाई अच्छी बात है, होना चाहिए शुक्र में खुश। लेकिन उससे वाला खुश होना चाहिए अगर किसी के दाढ़ी नहीं थी उसने दाढ़ी रख ली, किसी को तकवा हासिल नहीं था उसको तकवा नसीब हो गया, बदनजरी करता था, फिल्में देखता था, छोड़ दी उसने, नमाजों पर आ गया, कुरान जिक्र अस्कार करने लगा, तकवा नसीब हो गया, सुन्नत शरीयत का पैकर बन गया। ये सही मानों में खुश होने वाली चीज़ है भाई, ये है असल चीज़ जो सही मानों में खुश होना चाहिए। ये चीज़ साथ कब्र में लेके जाएगा और उसका फ़ायदा उठाएगा, नफा के वक्त से उसके बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। हज़रत वाला मिसाल ये दिया करते थे कि कोई बादशाह और बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मैंने अपना ख़जाना खोल दिया, जो भी फरियादी आएगा, जो भी मुझसे बात कहेगा, आज सारा दिन मैं सबकी ख्वाहिशात पूरी करूँगा, ख़जाने खोल दिए आज मैंने। तो कोई लोग बड़े बड़े हीरे जवाहरात मांगिए, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, बादशाह देता रहेगा। एक आज आएगा और बोलेगा कि बादशाह सलामत, वो बस मुझे दाल खिला दीजिए, मेरी तो ये ख्वाहिश है। अब उसने वादा किया बादशाह ने, उसको दाल खिला तो देगा लेकिन दिल में सोचेगा बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है, जाहिल है एक नंबर का, लोग हीरे जवाहरात ले लेके जा रहे हैं यहाँ से, ये मुझसे दाल मांग रहे, खिला तो देगा, दे भी देगा, लेकिन कहेगा उसने मेरी कीमत सही नहीं लगाई, इसने मुझे समझा नहीं, मैं बादशाह था मुझसे सही चीज़ लेता, कीमती चीज़। तो हज़रत वाला रहमत इरशाद फरमाते थे अल्लाह वालों का ये भी हाल होता है, उनसे बड़ी चीज़ क्यों नहीं मांगते, छोटी चीज़ें ही मांगो दुनिया की, असल चीज़ ताल्लुक माल्ला क्यों नहीं मांगते, रसूल अल्लाह का क़ुर्ब क्यों नहीं मांगते। अल्लाह वाले तो सबकी नहीं दुआ करते हैं जन्नत, जल्द अल्लाह अपना क़ुर्ब अता फरमा, तक़वा नसीब फरमा। लेकिन वही बात, माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब शेख भी तड़प देखता है कि किसकी क्या तलब होती है, इसकी डिमांड क्या है, इसकी चाहत क्या है, इसके दिल में क्या बसा हुआ है, इसकी ख्वाहिश क्या है, उस हिसाब से शेख की दुआएं और तवज्जोहात होती हैं। लेकिन ये ऐसा मुबारक सिलसिला होते हैं, मशायख के ऐसे मामलात होते हैं कि कोई भी महरूम नहीं रहता। हज़रत वाला रहमतुल्लाह का बहुत प्यारा शेर याद आया कि प्यासे को पानी मिले बिन प्यासे को प्यास, जो पहले से प्यासे आएंगे तो उनको पानी मिलेगा,
और बिन प्यासे को प्यास, जिसको प्यास ही नहीं लग रही उसको ठंडा मीठा कितने अच्छा पानी पिला उसको मज़े ही नहीं आएगा, उसको प्यास नहीं है। तो बिन प्यासे को प्यास, प्यासे को पानी मिले, बिन प्यासे को प्यास। तो जो बिल्कुल ठंडे लोग आएंगे जिनके अंदर मोहब्बत इश्क का मादा नहीं है, तो उनके उनको पहले पानी नहीं मिल दिया जाएगा, उनके अंदर पहले प्यास लगाई जाएगी, तलब लगाई जाएगी। महरूम कोई भी नहीं रहता। प्यासे को पानी मिले, बिन प्यासे को प्यास, उनके करम से अख्तर कोई भी नहीं बेआस। ये वो अल्लाह का फजल जब होता है तो प्यासों को पानी पिलाया जाता है, और जो बिल्कुल ही ठंडे लोग हैं नए नए आते हैं वो तो आहिस्ता 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 उनके अंदर प्यास और तलब पैदा की जाती है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की, इश्क की, ताल्लुक माल्ला की, तक़वे की, फिर आगे की कहानी फिर उनकी बढ़ेगी। तो महरूम कोई भी नहीं रहता, यह ऐसा मुबारक सिलसिला होता है। तो हज़रत का जो शेर है कि सजदे में सर रख दूँ ज़मीन को आसमां कर दूँ, हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैहि खाले कम उम्र थे, 20-22 साल शायद उम्र होगी तकरीबन। तो हज़रत वाला रहमतुल्लाह के वालिद का इंतकाल हो चुका था, हज़रत खुद हज़रत जो थे वो हज़रत मौलाना अब्दुल गनी फुलपुरी साहब रहमतुल्लाह से बैद थे, तो उनका भी बुढ़ापा था फुलपुरी साहब रहमतुल्लाह का। यहाँ हज़रत के वालिद का इंतकाल हो चुका था, तो एक बार हज़रत ने फरमाया तहज्जुद में फुलपुरी साहब ने हज़रत से कि मेरी बीवी नहीं रही। बहुत से ऐसे काम होते हैं बुढ़ापे में कि जो बीवी के सिवा कोई दूसरा कर नहीं सकता, एक दूसरात होती है, खिदमत का मौका मिल जाता है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं बुढ़ापे में, चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो। तो हज़रत को बहुत मोहब्बत थी शेख से, उनको तरस आ गया हज़रत को, हज़रत से तो कुछ नहीं कहा हज़रत वाला रहमतुल्लाह ने, लेकिन अपनी वालदा को तैयार किया कि आप मेरे शेख से शादी कर लें। और फिर उसके बाद उनको बहुत ज़िद करी, वालदा को समझाया कि शरीफ मसला है, शर्म की बात नहीं है, बुढ़ापे में शादी क्या है, आपको भी एक सहारा मिल जाएगा, उनको भी सहारा मिल जाएगा। लेकिन चूंकि वो हिंदुओं की आबादी थी और हिंदुओं में ये दूसरी शादी बड़ी ऐब और बुरी समझी जाती थी, उस वक्त तो सती हो जाती थी हिंदुओं में, तो ये सिलसिला अब तो शायद ख़त्म हो गया, या कहीं कहीं पुराने देहातों में शायद हो वहाँ पर भी, कि वहाँ चिता के साथी औरतें जल जाती थी, बेवा जो बचती थी उनके लिए नहीं थी ज़िंदगी में बाहर शौहर के इंतकाल के बाद। तो चूँकि एक माहौल भी बना हुआ था, तो उसके अफराद मुसलमानों पर भी तो बहुत मुखालफत करी हज़रत के रिश्तेदारों ने, घर वालों ने, और कहे तो बहुत बेहयाई का तुम काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो लोगों ने बहुत हज़रत को बुरा भला कहा, तो बहुत हज़रत ने समझाया कि ये सुन्नत और शरीयत का मामला है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है, ये आप लोग हिंदुओं के साथ रहते रहते उसके अफराद आ गए, मैं तो ऐन सुन्नत और शरीयत का अमल कर रहा हूँ। बहरहाल लोग नहीं समझे और बहुत हज़रत को लड़े भिड़े और बहुत हज़रत को बातें सुनाई। फिर हज़रत दिल बर्दाश्ता हो गया, और फिर उसके बाद हज़रत मस्जिद में चले गए और दो रकअत सलातुल हजात पढ़ के खूब रोकर सजदे में सर रख दिया। बस ये करना था, ये शेर की तशरीह भी बता रहा हूँ। थोड़ी देर में हुआ क्या कि हज़रत की जो अजीज़ जो हज़रत को तंग करते थे और लानत मलामत कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे समन के ऊपर, तो फिर उस ख़ानदान के ऊपर, उन लोगों के ऊपर तबाहियाँ आने लगी। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की टांग टूट गई, कोई छत से बच्चा किसी का गिर गया। तो एक चंद घंटों में, थोड़ी देर में, यानी एक नहीं लाइन से बराबर कुछ ना कुछ मुसीबतें बलाएँ आने लगी। तो ये सब परेशान हुआ है कि अचानक ही हमारे रिश्तेदारों में, एक ही ख़ानदान में इतनी बलाएँ ये घंटे में अचानक ही क्यों है, इस तरह से हो रहा है, सब परेशान हो गए। तो फिर किसी ने कहा कि भाई जाओ हज़रत को, अख्तर हमारे रहमतुल्लाह हज़रत के बारे में फरमाया, उनको उठाओ, वो मस्जिद में जाके उन्होंने सर रख दिया अल्लाह के आगे, रोए जा रहे हैं मुसलसल, वो रोए जा रहे हैं, तुम लोगों ने उनका दिल फाड़ दिया है, और वो रो के अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, बददुआ किसी को नहीं दे रहे, दुआ कर रहे हैं तुम लोगों के हिदायत के लिए, लेकिन वो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, जाओ उनको मनाओ, जब तक वो रोते रहेंगे मुसीबत और बढ़ेगी, अगर चाहते हो मुसीबतें टल जाए उनसे माफ़ी मांगो और उनको मनाओ जाके। फिर ख़ानदान वाले गए और हज़रत के हाथ पैर जोड़े और उनसे माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दे और आप सही हम गलत हैं। फिर हज़रत ने सजदे और सर उठाया तो मुसीबतें दूर हुई सब की और फिर अमन आया। बयान अदना सा अगर फैज़े पीरे मुहा कर दूँ, सजदे में सर रख दूँ, ज़मीन को आसमां कर दूँ, ये कहलाता है ताल्लुक माल्ला। आज हम देखें भाई कि ऐसा ताल्लुक माल्ला हमें हासिल है। मसला ये है कि शैतान ने हमारे कान में ये कह दिया है, अक्सर लोग ये कहते हैं यार हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हमारी दुआएं अल्लाह पाक कहाँ सुनेंगे, किसी अल्लाह वाले से दुआ कराओ तो दुआएं ज़्यादा कबूल होंगी। तो ये बहुत बड़ा शैतानी वसवसा है, क्योंकि कुरान और हदीस में कहीं पर भी शरीयत मुतहरा में कहीं ऐसा मज़मून नहीं मिलता कि अल्लाह पाक गुनाहगार फाशिक फाजरों की दुआओं को कबूल नहीं करेंगे। कहाँ है भाई, को हवाला हो तो बता दे, हमारे इसमें भी वफ हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, ये अफसर ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के लोग, तुम लोग गुनाहों की वजह से दुआएं मांगोगे लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी गुनाहों की वजह से। अब कोई बोले जी कह तो दिया अफसर ने गुनाहों की से दुआएं कबूल नहीं होंगी, तो भाई उसका जवाब ये है, ठीक है गुनाहगार है ना, अगर कोई अपने आप को गुनाहगार समझ रहा है और समझ रहा है कि मैं मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, तो रोने वाली क्या बात है, तौबा कर लो गुनाहों से फिर दुआ मांगने बैठ जाओ, 5 मिनट की बात है ये थोड़ी है, क़यामत तक के लिए मोहर लगा दी अल्लाह रसूल ने कि कमबख्त दूर हो जा तू फासिक है मर जा जा दफा हो, ये मतलब थोड़ी है। ठीक है, अगर अपने आपको कोई गुनाहगार समझ रहा है कोई मसला नहीं है, गुनाहगार अच्छी बात है, आप तौबा कर लें, अल्लाह ये गुनाह करता हूँ आज के बाद नहीं करता, मुत्तकी बन गया, अब मांगे दुआ, अकाउंट क्लियर हो गया, गंदगी का साफ हो गया, वो हदीस शरीफ के से बाहर आ गया, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, ये मायूस होने वाली बात थोड़ी है। तकवा अख्तियार कर ले, फजर नहीं पड़ता, बदनजरी करता रहता है, हराम काम करता है, दाढ़ी मुंडाता है, ये दूसरे गुनाह के काम, हर इंसान का अलग मामला है, देखे वो कौन कौन से गुनाह छोड़ दे, तौबा इस्तग़फ़ार करे, आइंदा ना करने का अहद करे, उसके बाद दुआ मांग ले, क्या मसला है। जैसे गालिब का शेर था ना, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो हज़रत वाला रहमतुल्लाह सख्त नाराज़ हुए थे इस शेर के ऊपर, फरमाया था गालिब ने उम्मत को मायूस कर दिया, ये क्या जाहिराना उसने शेर कहा कि काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं, काबे पे जाने की इल्ट्री बैंड लगा दी उसने, तुम गुनाहगार हो तुम्हें शर्म नहीं आती, ये गुनाहगार मुँह अल्लाह को दिखाओगे, जाकर काबे ही मत जाओ। हज़रत ने फरमाया ये वाजिब है शेर की तरमीम की जाए, काबिल तरमीम शेर होना चाहिए, शेर में तरमीम होनी चाहिए, तो हज़रत ने फरमाया इसका जवाब ये, मैं इसी मुंह से काबा जाऊंगा, तो दूसरा मुंह तो है नहीं भाई, गंदा है, अच्छा है, बुरा है, फासिक फाजर नेक जैसा भी हूँ, अल्लाह पाक जैसी भी शक्ल है, अच्छी बुरी गुनाहों की वजह से या तकवे की वजह से नूर है, जो भी अल्लाह एक ही तो मुंह है, आपने बनाया जैसा भी चेहरा है अल्लाह पाक, इसी मुँह से मैं काबा जाऊँगा, शर्म को अपनी खाक में मिलाऊँगा, रो रो के मैं उनको यूँ मनाऊँगा, अपनी बिगड़ी यूँ बनाऊँगा। अदम भाई बस ये मजमून भी तो देखे आदमी, तो अल्लाह बंदों को मायूस नहीं करना अल्लाह से, अरे तुम तो बदमाश हो, तुम तो गुनाहगार हो, तुम्हारी क्या अल्लाह सुनेगा, कहना अच्छा भाई बदमाश हो, जैसे मौलाना अशरफ अली थानी साहब रहमत लोग किसी ने कहा तुम काफिर हो बयान शुरू होने से पहले, मतलब ये था भगड़ बचे गुस्से में आए और बयान ना हो सके, बस मुनाफिकीन जो होते हैं वो इस तरह से हरकतें माजी में करते रहे अल्लाह वालों के साथ, लेकिन अल्लाह वाले थे अक्ल व शऊर रखते थे, गुस्से में नहीं आए, जज्बात में नहीं आए, उसने कहा अच्छा अगर तुम मुझे काफिर कहते हो तो लो मैंने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है अब बयान शुरू करें है ना, अगर मैं काफिर ना, मैंने कलमा पढ़ लिया, और बोलो भाई अब क्या एतराज़ है, बयान शुरू करें, चलो भाई चलो भाई टाइम हो गया बयान शुरू, इसके बाद माशाल्लाह क्या बयान किया है ना, तो ये तरीका होता है, तो भाई कोई कुछ कह रहा ठीक है भाई तौबा कर लिया, अब बोलो अल्लाह भी माफ़ कर देता है, काफिर को भी माफ़ कर देता है, काफिर माफ़ी मांगे कलमा पढ़ ले मुसलमान ख़त्म, वो भी पाक हो गया, क्या बचा, तो मायूस होने वाली कहानी है ही नहीं, मायूस आदमी हो नज़ा के वक्त तक तौबा के दरवाज़े खुलेंगे, बस गरगरा शुरू हुआ, सकरात का आलम शुरू हुआ और गैबी चीज़ें नज़र आना शुरू हुई, अल्लाह ने गैबी पर्दा हटा दिया, वह उस वक्त तौबा के दरवाज़े बंद, क्योंकि अब गैब देख लिया, उस वक्त कहानी ख़त्म, उस वक्त तक तौबा के दरवाज़े खुलेंगे, मायूस होने वाली बात नहीं होती। तो दुआएं किस तरह कबूल होंगी भाई, तो दुआएं कबूल करने का पहले तरीका बेहतरीन ये है कि पहले इंसान जो भी उसके गुनाह कबीरा में जिनका वो इर्तिकाब करता रहता है आदत है, उसे 5-10 मिनट तक पहले तौबा इस्तग़फ़ार कर ले, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ ले थोड़ा सा, फिर अल्लाह का जिक्र करे, फिर अत्तहियात में जैसे बैठते नमाज में उस पोजिशन पर आए और अपने हाथों को दोनों सीने के आगे ऐसे उठाए, ये सुन्नत तरीक़ा है, दोनों हाथों को बहुत से लोग चिपका के रखते हैं सीने से, चिपका के नहीं रखने, बहुत से लोग इतना हाथ को फैला लेते हैं जैसे ऊपर से तरबूज गिरेगा कोई, यूँ करके ना यूँ करके भाई ये भी गलत है, ना यूँ है, एतदाल होना चाहिए, सीने से आगे 1 फिट कम से कम हाथ आदमी बाहर निकाले, और हाथों को मिलाना नहीं है, ना बहुत यूँ करके खोलना दोनों हाथों को, ना बिल्कुल चिपकाना है, बल्कि यूँ थोड़ा सा ऐसे हाथों, और हथेलियाँ बहुत से लोग क्या करते हैं यूँ होती हैं उनके चेहरे की तरफ, ये हथेलियाँ खुली हुई और आसमान की तरफ हाथ हो, पता चले कोई भिखारी मांग रहा है, और अपनी कल्बी कैफियत ज़रा नोट कीजिए, कभी इसका एक पैरामीटर दे रहा हूँ, यूँ कीजिएगा। अगर हाथों को यूँ करके अगर हम बिल्कुल सीने से चिपका के अगर दुआ मांग रहे हैं, उस वक्त कल्ब की कैफियत देखें क्या होगी। और थोड़ा सा हाथ यूँ करके, ऐसे यूँ करके, और फिर अगर अपने कल्ब की कैफियत देखें तो एकदम से दिल सुबड़ेगा, शर्म सी आएगी कि यार एकदम से आदमी कहेगा यार लोग देख रहे हैं, दादी मैं क्या करूँ, भाई क्या कर रहा है, अल्लाह से तो भीख मांग रहा है, इंसान से थोड़ी मांग रहा है। शर्म आएगी, दिल में लगेगा जैसे किसी ने दिल पकड़ लिया। करके देखें इस कैफियत को, ना हो तो फिर बताइएगा। हाथों को थोड़ा सा यूँ करके आते आते भी लोग देखें, उनको भी अदब और तमीज़ है कि इस तरह से अल्लाह से भीख मांगी जाती है। या यूहन्नास अंतुमुल फुकारा, अल्लाह ने फरमा तो दिया कुरान में, ऐ बंदो इंसान हो, मुसलमान नहीं कह रहा अल्लाह पाक, नास हो, नास जितने भी हैं, मुसलमान काफिर मुनाफिक दोगले अच्छे बुरे जो भी हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं तुम सब के सब मेरे दर के फ़कीर हो, इल्लाह मेरे दर के फ़कीर हो सब के सब। जब अल्लाह ने फ़कीर हमें बनाया है, कुरान पाक में हमें फ़कीर कहा है, तो वह फ़कीर के हाथ में व्रत वाला फरमाते थे, मेरे दिल में आया शायद को पढ़ के फ़कीर के पास तो प्याला भी होता है। अल्लाह ने जब फ़कीर कायम है तो फिर अल्लाह ने प्याला भी दिया होगा। तो हज़रत ने फरमाया दिल में आया, दोनों हाथों को मिला लो, प्याला बन गया। अल्लाह ने हमें ऐसा प्याला दिया, ऐसे रजिस्टर्ड फ़कीर हैं कि अल्लाह ने प्याला हर वक्त साथ दिया, हमारे साथ रहता है वो प्याला। बस जब दिल चाह यूँ प्याला बनाओ, बन गया प्याला भाई, मांगे अल्लाह से भी, कौन मना कर रहा है। और दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल और आखिर में, क्योंकि दुआ मुअल्लक रहती है ज़मीर और आसमान के दरमियान। तो पहले गुनाहों की तौबा, दुआ अगर कबूल कबूल करवानी है अल्लाह से, उसका तरीक़ा बताते हैं उलमा और मशाइख 1400 साल से इस बात पर इजमा जो बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना दुआएँ कबूल नहीं होती, तो भाई पहले तौबा तो करो, पहले रूठे रब को मनाओ, फिर हाजत ज़्यादा चाहिए, फिर हाजत पेश करो। अल्लाह गुनाहगार गुनाहगारी की हालत में भी दुआ सुन लेते, लेकिन ज़्यादा अच्छा तीर बहदफ का तरीक़ा ये है कि पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगो, अकाउंट क्लियर करो, फिर उसके बाद हाजत रखो। अब्बा को नाराज़ किया हुआ है और पहुँच के अब्बा अगर आप 500 देना, अब्बा 2 थप्पड़ लाएगा कमबख्त, एक तो बदतमीजी करता है, नाफरमानी करता है, पैसे मांगने आ गया। तरीका ये होता है भाई पहले अब्बा के पास पैसे मत मांगो, पैर दो अब्बा गलती हुई, मैंने आपको ऊँची आवाज़ में बात की थी, मक्खन पालिश का होगा ना, माफिया भी मांगो, फिर बोलो अब्बा 500 रुपये चाहिए, फिर हो सकता है अब्बा जेब में डाल के 5000 दे देगा। ऐसे ही करते हो तुम भी हंस रहे हो। तो ये तरीका होता है पहले, हालांकि तो मिसाल दी जाती है, अब्बा वाला मामला रब्बा के साथ नहीं, अल्लाह तो फासिक फाजिर गुनाहगार काफिरों की भी सुनना है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट की नहीं ये बातें बताई जाती हैं। उसके बाद फिर अल्लाह के आगे हाजत बाद में रखे, अल्लाह ये परेशानी दूर कर दे, ये कर दो। और दुआ में तकरार हो, तकरार हो। आप ने इरशाद फरमाया अल्लाह को वो बंदे महबूब हैं जो दुआ में अड़ कर मांगते हैं, अड़ के मांगते हैं, अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लम के अड़ के दुआ मांगना, ये नहीं है यार एक इतने दिनों से दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह पाक कबूल ही नहीं कर रहे। अरे भाई अड़ के दुआ मांगने का मतलब है इस्तेहामत के साथ डट जाओ, तन्हाई में बैठो, अगर लोगों के सामने कोई मसला हो रहा है, नई ताल्लुक माल्ला कायम हो रहा है, तन्हाई में बैठ जाओ, रो के दुआ मांगो, रोना ना है रोने वाली शक्ल बना लो, 5-10 मिनट तक तड़प के टूटे हुए दिल के साथ मुस्तरिब दिल के साथ सूरह नमल में अल्लाह फरमा रहे हैं अम्मीबुलमुस्तर, कौन है जो बेकरार की पुकार को सुनता है। लफ्ज़ क्या आ रहा है, बेकरार तड़पते हुए दिल के साथ, कौन है मुस्तर्रा तड़पते हुए बेकरार लफ्ज़ है, तो कौन है जो बेकरार तड़पते हुए दिल की पुकार को सुनता है। और अल्लाह फरमा रहे हैं मैं उसकी दुआ को पुकार को खाली सुनता नहीं हूँ, फिर उसकी मुसीबत उसकी परेशानी दूर कर देता हूँ। शर्त क्या है, तड़प के मांगना है, तकरार हो, मुस्तकिल हो, बार बार हो, सुबह शाम हो, पीछे पड़ जाए, अड़ जाए, वो अल्लाह फिर उसको वो चीज़ अता फरमा देते। सरसरी दुआएं जो होती है ना ढीली डाली, वो फिर काम नहीं दिखाती, ढीली डाली दुआएं। और फ़र्ज नमाज के बाद वक्त कबूलियत होता है, फ़र्ज नमाज के बाद लोग सलाम फेरते और उड़ के ऐसा भागते जैसे अल्लाह पे एहसान करने आए थे। अरे भाई जो दुआ है वो तो इबादत का मगज़ है, नमाज को नमाज के बाद जो दुआ हम करते हैं वो उसको मगज़ करार दिया जा रहा है, नमाज को मगज़ नहीं का, क्योंकि फरिश्ते बहुत नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, बहुत हैं, लेकिन अल्लाह से भीख मांगने वाले कम हैं, अल्लाह को आजी वाले भीख मांगने वाले लोग पसंद हैं, इसमें आजी है ना मगज़ है। आफ़ुसलम फरमाने दुआ इबादत का मगज़ है, मगज़ एक बुनियादी चीज़ होती है, जड़। जब मेहनत कर ली, मजदूर ने नौकरी पूरी काम किया, मेहनत करी, जब उसको मजदूरी मिलने का वक्त आया तो उड़ के भाग गया मजदूर, बेवकूफ़ कहेंगे ना भाई नमाज पढ़िए, मस्जिद में आए हो तुम, अल्लाह की इबादत करिए, अब तुम्हें मजदूरी मिलने का वक्त आ रहा है, वक्त कबूलियत शुरू हो गया नमाज फ़र्ज नमाज के बाद, अब अल्लाह देने के लिए एक हाथ बढ़ा रहा है, ये उठ के भाग गया, भाई खाली मजदूरी करनी थी, फल नहीं चाहिए था मजदूरी का, तो भाई जब आपने 10 मिनट नमाज पढ़ ली तो 5 मिनट सुकून से बैठ के ज़रा लिल्लाहियत के साथ 3, 5 या 7 दफ़ा कम से कम एक बात की तकरार करता रहे, कुछ हाजत हो कुछ हो पीछे पड़ जाए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा इसका कि जब आदमी दुआ मांग के आमीन और करके चेहरे पे हाथ फेर के जब उठेगा तो कल में सुकून मिलेगा, इसे पहली चीज़ जो मिलेगी डिप्रेशन ख़त्म होगा, सुकून मिलेगा। लेकिन ये झूठा सुकून नहीं होता, धोखेबाजी वाला, हकीकत में फिर अल्लाह मसला भी फरमा देंगे। तो सुबह शाम 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से दुआ करें, 5 वक्त नहीं कर सकता कोई मसला है परेशानी है और तो कभी कभारी होती है ऐसी, तो आदमी वो फिर पीछे लग जाए अल्लाह पाक के, जिस तरह बच्चा माँ के पीछे लगता है, माँ नहीं भी चाहती कोई चीज़ दिलाना, बाप नहीं भी चाहता लेकिन बच्चे की ज़िद की वजह से दिला देता है। कितनी दफ़ा खुद मेरे साथ ऐसा हुआ, आप लोगों के साथ भी हुआ कि बास फ़कीर ऐसा पीछे लगे और इरादा था नहीं कि नहीं ये हट्टे कट्टे नहीं देना है और ये हाजतमंदों को देना चाहिए और शरी मसला भी है, लेकिन उनकी मिन्नत समाजत की वजह से इरादा ना होते भी इरादा बन गया और कुछ ना कुछ दिया, होता है ना ऐसा, तो उससे दिल में मज़मून आया, देखो तुम्हारा बिल्कुल इरादा नहीं था देने का लेकिन देना पड़ा ना आखिर, इस वजह से वो पीछे पड़ गया था फिर आपका भी दिल नरम हो गया और फिर हम कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो भाई जब आम हम जैसे इंसानों का ये हाल है तो रब्बुल आलमीन उनके क्या कहने, जो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं, जब उसके भी उनके पीछे कोई पड़ेगा तो क्या वो नहीं देंगे। तो इसलिए भाई पीछे पड़ना चाहिए अल्लाह के, वरसा अल्लाह से अड़ के मांगना चाहिए अल्लाह, और ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ताल्लुक़ माल्ला शेख की ज़िंदगी में हासिल कर ले, क्योंकि शेख किसी के ज़िंदा नहीं रहते, अल्लाह वाले आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो मुबारक हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में और शेख की ज़िंदगी में वो टेक्नोलॉजी शेख से ट्रांसफ़र करवा देते हैं। हज़रत वाला रहमतुल्लाह चले गए, जैसे हज़रत के पास खुलफा है माशाल्लाह, मुस्तजाब दावत हैं, उनकी दुआएँ कबूल हो रही हैं ना, हज़रत तो चले गए तो ये सब तो नहीं बन सके, हज़रत से तो बहुत लोग बैठ थे लेकिन सब तो मुस्तजाब दावत नहीं बन सके ना, वही बात आती है घूम फिर के, ना इसकी नहीं को मुरीदीन का मामला है ना खुलफा का मामला है, कोई शेख हुआ खिलाफत मिली होगी तो ये वही मुस्तजाब दावत बनेगा, नहीं ऐसा नहीं, कितने ऐसे लोग भी होंगे कि जिनको खिलाफत मिली हो लेकिन मुस्तजाब दावत नहीं है, कितने ऐसे हजरत के मुरीदीन हैं जिनको मैं जानता हूँ उनको खिलाफत नहीं मिली लेकिन मुस्तजाब दावत हैं। वजह क्या है कि मेयार फजीलत तकवा है ना कि खिलाफत, मेयार फजीलत तकवा है ना कि खिलाफत, तो फिर वो दुआएँ करते हैं तो उनका ऊँचा मुकाम है। तो शेख से हासिल करना ज़िंदगी में कि हमें अल्लाह ऐसा मुकाम अता फरमा दे कि अगर हम भी सजदे में सर रखें तो ज़मीन को आसमां कर दें, ऐसा ताल्लुक़ हम लोग क्यों नहीं बनाते शेख से, फिर पछताएंगे रोएंगे फ़ायदा कुछ नहीं होगा फिर, क्योंकि ये बड़ी कीमती चीज़ बता रहा हूँ जो लेने वाली चीज़ है शेख से, ताल्लुक़ माल्ला तकवा तकवे की बरकत से और ईमान और यकीन के साथ 100% यकीन के साथ दुआएँ किया करें, जो तरीक़ा बताए बयान को बार बार सुने कसरत के साथ करें। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ के मुसन्निफ, उनका वाक़ पैदाइशी नाबीना थे, ये माँ को बड़ी मोहब्बत थी इनसे, बहुत परेशान थी कि मेरा बच्चा नाबीना है पैदाइशी क्या करूँ, तो कुछ नहीं करती थी इससे रो के अल्लाह से रोज़ाना दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बच्चे की बिनाई को बहाल फरमा दे। फिर एक मुकाम ऐसा आया ज़िंदगी में कि वो लड़कपन की उम्र तक पहुँचे, उनकी दोनों आँखें सही हो गई, ये तारीख़ी वाक़ियात हैं सच्चे, बहुत हैरान हुई बहुत खुश हुई। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उनको ख्वाब में ज़्यारत हुई उनकी वालदा को और फरमाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तुम जानती हो कि अल्लाह ने तुम्हारी ये दुआ क्यों सुनी और तुम्हारी बच्चे की आंखों को बहाल फरवा दिया, क्योंकि तुम मायूस नहीं हुई थी और कसरत दुआ की वजह से अल्लाह ने उसकी आँखें वापस कर दी तुम्हारे बेटे की। अल्फाज क्या हैं, कसरत दुआ की वजह से कसरत करनी पड़ती, अल्लाह की मोहब्बत भी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ दफ़ा भाई देर क्यों हो जाती है किसी दुआ में, तो एक हदीस पाक का खुलासा मनकूल है हमारे प्यारे आखिर दो जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नकल है कि जब कोई बंदा तकरार करता है किसी दुआ की तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं कौन सी मानूफ आवाज़ है, कौन सी मानूफ आवाज़ है और बहुत प्यारी आवाज़ है और मुझे इस आवाज़ से बहुत मोहब्बत है। तो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह ये बेचारा कब से एक चीज़ आपसे कह रहा है, आप इसकी सुन लें इसकी मान लें, आप इसकी दुआ कबूल क्यों नहीं करते। तो अल्लाह फरमाते हैं इसका पुकारना इसकी बोली इसका अंदाज़ मुझे बहुत प्यारा लगता है और मुझे पता है अगर मैंने इसकी हाजत सुन ली तो ये भाग जाएगा, फिर ये मुझे दुआ मांगना छोड़ देगा, मुझे पुकारना छोड़ देगा और इसका पुकारना मुझे बड़ा पसंद है और मैंने लिख भी लिया कि इंशाल्लाह उसको चीज़ मैं इसको ये चीज़ दे भी दूँगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी हमद व मनाजात में मुझे मज़ा आता है जब ये मुझे पुकारता है जिस दर्द से दुआएं मांगता है। तो मैंने तो लिख तो लिया है कि मैं इसको दे दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, तो फिर अल्लाह पाक एक वक्त आता है वो चीज़ उसको अता फरमाता है। और बाज़ दफ़ा कोई अल्लाह से दुआ करता है, ये भी आगे आप सुनने इरशाद फरमाए कि अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों से, कौन सी गैर मानूस आवाज़ है, मुझे इसकी आवाज़ से बोग्ज़ है, बोग्ज़, ये जो मांग रहा है उसको जल्दी दो, फारिग करो, इसका पुकारना मुझे पसंद नहीं है, भगाओ उसको, जल्दी दो उसको। अगर किसी की फौरन दुआ कबूल हो जाती है बग़ैर फासिख फाजरे, तो इस घुमंड में ना रहे कि वो बहुत बड़ा मुकाम उसको हासिल है। तो हमें नहीं पता कि बातनी मामलात क्या हैं, वो अल्लाह को पता है किसके, सही ना। और कोई अल्लाह वाला है, कोई मुत्तकी है बेचारा, और वो उसकी दुआ में देर हो रही है, तो ये ना समझे कि मैं कोई गुनाहगार हूँ, फासिख हूँ, या मायूस ना हो, है ना। तो ये हकीकत हाल से हम वाकिफ़ नहीं हैं, असल मामलात कुछ और होते। तो बस अपने आप को ना खुतुब समझे, ना अब्दाल समझे, ना फासिख समझे, ना गुनाहगार समझे, बस नॉर्मल एक मुसलमान समझे। गुनाहगार अगर है तो तौबा इस्तग़फ़ार करे, फिर अल्लाह से दुआ मांगे, और मुसलसल दुआ मांगता रहे। अगर तू पूछे नेकोकारों को, अगर तू पूछे सिर्फ नेकोकारों को, कहाँ जाए फिर बंदा गुनाहगार तेरा? अगर सिर्फ अल्लाह वालों को, नेक लोगों को पूछे तो गुनाहगार लोग कहाँ जाएंगे भाई, मर जाए जाके भाई। नेकोकारों का भी वही है और गुनाहगार लोगों का भी वही है, अल्लाह सबका है, बस मांगने का ढंग आना चाहिए। तो मायूस होने वाली बात नहीं है। हज़रत शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत वाला रहमतुल्लाह के शेख अव्वल, जिससे नक्शबंदी के बहुत बड़े औलियाल्लाह थे माशाल्लाह, और हसीन बहुत थे। हज़रत फरमाते थे कि ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता बैठा है, ऐसा सुनता हूँ उनका माशाल्लाह। हज़रत फरमाते हैं इनके एक मुरीद थी, शाह मोहम्मद अहमद साहब के कोई मुरीद थे, और हज़रत के बहुत चहीते थे, ताल्लुक़ था। हर मुरीद का मामला शेख से अलग होता है, वही बात, शेख भी कोई फरिश्ता तो नहीं होता, इंसान होता है। तो जो जितना अल्लाह के लिए जिस दर्जे की मोहब्बत रखता है, फिर शेख की भी मोहब्बत इस हिसाब से, वो शेख के दिल में भी उसकी मोहब्बत उसी हिसाब से आती है। तो बहरहाल उसने किसी गुस्ताख रसूल को कत्ल कर दिया था उनके मुरीद ने। अब घर वाले रोते पीटते, हज़रत वो जेल में चला गया, और हज़रत वो फांसी का शायद ऑर्डर हो जाए, आप दुआ कर दें। और एक रोना पीटना मचा हुआ था भाई, उनके अब्बा वगैरह सब। अब ताल्लुक ख़ास मुरीद था शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह को, तसल्ली वगैरह दे के कहा ठीक है इंशाल्लाह दुआ करेंगे, आप लोग परेशान ना हो। फिर हज़रत के एक पीर भाई और शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह के ख़ास मुरीदीन में थे वो भी, उनका नाम कामिल अलाबादी साहब रहमतुल्लाह, तो वो आए हुए थे एक बार इंडिया से, तो उन्होंने वाक़ बताया। तो वो भी उस वक्त नौजवान थे, अलाहाबाद का वाक़ है। तो उन्होंने कहा मैंने फिर ये देखा कि तहज्जुद में हज़रत उठे और फिर छत पे गालिबन बैठे जाके खुले आसमान के नीचे दो रकअत सलातुल हाजात पढ़ी, सलातुल तौबा, सलातुल हाजात, और फिर अल्लाह से इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे किसी इंसान से गुफ्तगू की जाती है, आंखें खोल के सुने हुई। तो इस तरह से फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू करी जिस तरह किसी इंसान से गुफ्तगू की जाती है। अब उन्होंने अजीब मंजरकशी करी अपने शेख की, कहने लगे मैंने देखा सलातुल हाजात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ के अब बातचीत कर रहे हैं कि अल्लाह पाक आपको तो पता ही है, वो हमसे बहते बेचारा, अब वो सब घर वाले हमें अल्लाह वाला समझ रहे हैं, अब रो रहे हैं पीट रहे हैं, अब हम दुआ आपसे करें और आप नहीं सुनेंगे, और उसको फांसी अगर हो गई तो हम काहे के अल्लाह वाले रहे तो इस तरह उनका अंदाज, ये एक बेतकल्लुफी का ख़ास एक नाज वाले मामला होते हैं बाबा अल्लाह वालों के। अच्छा जिस तरह बातें कर रहे हैं उस तरह अल्लाह से बातें कर रहे हैं और आंसू पोछे जा रहे हैं, कभी इस आँख से कभी इस आँख से रोए जा रहे हैं, आंसू बहे जा रहे हैं और दुआएं मांगे जा रहे हैं, यहाँ तक के फजर की अजान हो गई। कह रहे हैं तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक हजरत रोते रहे, आंसू बहाते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे इसी अंदाज से। और फिर उसके बाद कहने लगे मैं बैठा हुआ था, सब देख रहा था मंजर, फिर जब हजरत उठे तो मुझे बैठा हुआ देखा तो हजरत ने यूँ आस्तीन चढ़ाई, अब देखते हैं कौन माई का लाल उसको फांसी देता है कि आस्तीनें चढ़ाई और हंस के फरमाने लगे कौन देखते हैं माई का लाल उसको फांसी देता है। और फिर वही हुआ कि अब अगली पेशी हुई, कुछ हुआ वो 22 भरी रिकॉर्डिंग गायब, सबूत सब जितने भी जिन्होंने क्लेम किया था जो किया था उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया, क्या हुआ क्या मामला हुआ कुछ नहीं पता, 22 भरी हो गया। और मुरीद को कैसा एतमाद था कि जब घर वालों ने कहा हजरत ने यकीन दिलाया इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा हम दुआ करेंगे, तो मुरीद ने कहा हजरत ने अगर ये कह दिया इंशाल्लाह मुझे कोई फांसी नहीं दे सकता, मैं बाहर आ जाऊँगा। تو یہ کہلاتا ہے تعلق ماللہ، تعلق ماللہ. تو بھائی یہ چیزیں شیخ سے حاصل کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے. حج عمرے پہ اگر کوئی جائے تو یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں حوالوں کے ساتھ کہ جیسے ہی کعبۃ اللہ شریف پہ نظر پڑے اور اس وقت جو آپ نے دعا مانگ لی وہی دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے مشائخ فرماتے تھے کہ جب کعبۃ اللہ حرم میں داخل ہو تو نظر نیچی کر کے چلو. نظر تو ویسے بھی چلنی چاہیے نظر نیچی کر کے، تو کعبہ پہ نظر نہ ڈالے، نہیں تو ضائع ہو جائے گی نظر، وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. تو آدمی جب حدود حرم میں داخل ہو تو چلتا رہے، لیکن جب اندازہ ہو کہ کعبۃ اللہ شریف یہاں سے مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا یا ہو رہا ہے، تو دیکھے نہیں کعبۃ اللہ شریف کو، نظر نیچی کر کے چلتا رہے اور پھر بالکل کعبہ شریف کے قریب پہنچ کے بس ایک نظر اٹھائے اور پہلے سے دل میں ارادہ ہو یہ دعا مانگنی، اور ٹھک سے جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ اس کو قبول ہوگی. اب مختلف دعائیں، لوگ مختلف دعائیں مانگتے ہیں بھائی، صحیح نا، لیکن زیادہ اچھی کیا دعا ہے بھائی؟ کیا جب کعبۃ اللہ شریف پہ نظر پڑے تو اللہ پاک سے بولے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. کیا مطلب؟ پھر کعبۃ اللہ ہو یا نہ ہو، مکہ مدینہ ہو نہ ہو، جہاں ہوگا وہیں اس کا کعبہ ساتھ ہوگا، کیونکہ مستجاب الدعوات بن گیا. مستجاب الدعوات بننے کے لیے کعبہ میں دعا کرنا ضروری نہیں ہے، کسی بھی مقام پہ جہاں بھی ایسا بندہ دعا کرے گا بس اس حدود حرم والا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اللہ ویسی دعا اس کی سنتے. اور مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جن کی دعائیں کثرت سے ہوں، ہر دعا نہیں، ہر دعا تو بعض انبیاء کرام کی بھی نہیں اللہ نے قبول کری مصلحت کی بنا پہ. مطلب یہ ہے کہ مستجاب الدعوات کثرت سے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ طریقہ ہے. تو آدمی ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، کیا عمل کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، مستجاب الدعوات بنا دیے جاؤ گے. بتا تو دیا آپ وسلم نے مستجاب. ہم کہتے ہیں نا کیسے دعائیں قبول ہوں، صحبت شیخ کی برکت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر تقوی نہیں ہوگا تو جو شیخ ہوگا کب تک دھکا لگائے گا، کب تک دھکا لا کے گاڑی اسٹارٹ کرے گا بھائی کسی کی؟ اپنی گاڑی خود کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے؟ کہتے ہیں نا کہاوت ہے یار، کب تک دوسروں کی کمائی پیش کرو گے، کبھی تو اپنا کما لو کھا لو بھائی، کب تک دوسرے کے پیسوں پیش کرو گے؟ تو بات یہ ہوتی ہے ہم بھی کب تک دوسروں سے دعا کرائیں گے. آج شیخ ہے ٹھیک ہے، جب تک زندہ ہے شیخ کرے گا، شیخ خوش ہوتے ہیں مشائخ کو، لیکن بھائی خود کا اپنی دعائیں قبول کرنا اللہ سے کروانا ہم سیکھیں گے، اصل تو چیز یہ. اور یہ بھی ایک مسئلہ بتا دوں، کسی کے حق میں شیخ کی دعا، کسی مرید کے حق میں دعاؤں کا قبول ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مسئلہ سمجھ لیں. نہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر شیخ سے ہر شیخ کی دعا ہر مرید کے حق میں قبول ہوتی ہے، نہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی شیخ کا انتقال ہو گیا اور دوسرا شیخ کیا، تو اب جیسا فیض جو قلبی کیفیات شیخ اول کے ساتھ تھی دوسرے شیخ کے ساتھ بھی وہی کہانی شروع ہو گئی، اور بالکل اسی طرح اس سے زیادہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں دوسرے شیخ کی بھی. بعض دفعہ ایسا ہو بھی جاتا ہے لیکن عموماً ایسا کم ہوتا ہے، اکثر لوگ پہلے ہی شیخ کو یاد کر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یار وہ بات کہاں آپ شیخ کی، جو ہماری دعائیں ان کے دور میں ان کے ساتھ جو معاملات تھے نا، ایسا یہ اللہ کی حکمت ہے واللہ عالم کیا معاملات ہوتے ہیں. تو زیادہ بہتر طریقہ اچھا یہ ہے کہ آدمی ایسا تعلق ماللہ شیخ کی زندگی میں حاصل کر لے کہ وہ اللہ پاک اس کی دعائیں سننے لگیں. تو سارے آداب اور مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ اور ساری چیزیں یہ بتا دی گئی ہیں بھائی، اس پر عمل شروع کریں. ہے نا، ہم بھی اس لیے کہتے ہیں بھائی آج ہم ہیں کل نہیں ہیں، ہیں پھر کیا کرے گا پھر آدمی؟ پھر تو وہ شرک ہو جائے گا. آدمی کہے گا وہ چلے گا دعا کرنے والے، بھائی اللہ والے مر جاتے ہیں، خدا تو حی القیوم ہے نا، دعائیں سننے والا تو وہی ہے، سب کچھ کرنے والا تو وہی ہے، وہی دعائیں قبول کرتا بھی ہے، وہی دعائیں کرواتا بھی ہے، قبول بھی وہی کرتا ہے. تو اصل اللہ تو ہے نا حی القیوم، پھر کیا غم ہے؟ بس لینے کا فن سیکھنا ہے، لینے کا ڈھنگ سیکھنا ہے شیخ سے. اگر یہ اگر نہیں سیکھا تو کیا فائدہ؟ جس نے لیا شیخ سے خون تمنا کا سبق، حضرت والا کا شعر ہے، جس نے لیا اپنے شیخ سے خون تمنا کا سبق، اسی کے ہی دل میں ہر دم جلوے جانا دیکھا، اسی کے ہی دل میں ہر دم جلوے جانا دیکھا. کہ جس نے اپنے شیخ سے خون تمنا کا صحیح معنی میں سبق حاصل کر لیا، پھر بعد میں اسی مرید کے دل میں دنیا نے جلوے جانا دیکھا، یعنی اللہ کا جلوہ دیکھا وہ، ویسے مریدین کے دلوں میں بھی پھر. تو یہ سبق ہمیں شیخ سے زندگی میں لینے، پہلے مایوس آدمی نہ ہو، اگر پھر کبھی توبہ ٹوٹ جائے، گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لو، پھر اپنی حاجت پیش کرو، تو اعلیٰ درجہ دعا کی قبولیت کا یہ کہ پچھلے گناہوں کی معافی، پھر اس کے بعد اللہ سے حاجت، ہم اللہ کے آگے اپنی حاجت کو رکھیں، پھر اللہ پاک کرم فرماتے ہیں. یہ ہے طریقہ دعائیں کو قبول کروانے کا. اور ہر چیز میں یہ کہنا، جیسی کو پریشانی یا حضرت کو فون کرو، حضرت کے پاس جانا ہے، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے۔ تو طریقہ یہ ہے، حضرت والا نے ادب سکھایا، پہلے خود اللہ سے دعا کرو، صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ پڑھ کے جو بھی ہے اچھی طرح سے، پھر اس کے بعد خاصان خدا سے دعا کرواؤ، پھر اللہ والوں سے دعا کرو، کون منع کر رہا ہے، لیکن پہلے خود اللہ سے رجوع ہو۔ اللہ والے سے اس لیے تعلق قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ سے رابطہ قوی ہو جائے۔ پہلے دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں، شیخ سے بیعت کے بعد تعلق کے بعد اتنی جان آ جائے کہ اب دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ یہ ہے شیخ کا مطلب کہ وہ ایک واسطہ کنڈکٹر ہوتا ہے اللہ تک پہنچانے کا، اللہ سے ملانے کا، اللہ سے رابطے کا، اللہ سے رابطے کو قوی کرنے کا، اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنے کا۔ یہ تھوڑی اللہ کو چھوڑ کے شیخ کو پکڑ لیا، بس سارا کام شیخ ہی کرے گا، یہ تو بھائی شرک ہو گیا ہے، تو یہ تو عقیدہ ہی خراب ہونے لگا ہے، تو عقیدہ ہی خراب ہو گیا ہے، تو بھائی یہ شیخ کا مطلب تھوڑی ہے۔ شیخ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے بیعت ہونے کا، کہ اگر کسی کا شیخ سچا اللہ والا ہے، اللہ مجھے بھی شیخ کی برکت سے بیعت اس کی ہر اس مقام تک پہنچا دے ببرکت تقوی، جیسے شیخ کی اشباری ہو میری بھی ہو جائے، جیسے شیخ کی دعائیں قبول ہو کسی کی تو اللہ میری بھی قبول ہو، جیسے شیخ کا ظاہر باطن ہو میرا بھی ویسے ہی ہو جائے، جیسے شیخ کے جو عقائد ہوں وہی میری بھی عقائد ہو جائیں، پورا آہستہ آہستہ مرید شیخ کے رنگ میں رنگتا جائے، یہ کہلاتا ہے بیعت کا مقصد، کہ پورا ڈھل جائے، اپنی ذات کو بھول جائے، شیخ کے اندر ایسا فنا کرے، یہ تعلق مع اللہ کہلاتا ہے، یہ چیز شیخ سے حاصل کرنی ہوتی ہے۔ آج شیخ یوں ہے تو ہم ہوتے ہیں یوں، شیخ رائٹ تو ہم لیفٹ، اتنا فرق ہوتا ہے مزاجوں میں، مخالفت میں، ہر چیز میں، عقائد میں، اعمال میں، ہر چیز میں، کہاں سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی۔ حضرت فرماتے تھے شیخ سے ایسا تعلق قائم رکھو، جب کبھی تنہائی میں اکیلے میں شیخ کبھی دعا کرے تو ہاتھ اٹھائے اپنے محبوبین کے لیے، احباب کے لیے، مریدین متعلقین کے لیے، تو اس کو کہنا نہ پڑے حضرت میری لیے دعا کیجیے گا، بلکہ جیسے اکیلے میں تنہائی میں کبھی شیخ ہاتھ اٹھائے تو تمہارا چہرہ سامنے آ جائے، سب سے پہلے 70,000 مرید ہو لیکن تمہارا چہرہ سامنے آئے، سامنے یہ کہلاتا ہے کہ تم نے واقعی اپنے شیخ کے دل میں جگہ بنا لی، شیخ کو سوچنا نہ پڑے کہ یار وہ کون تھا، وہ کس نے فلاں دعا کی نہیں کہا تھا، یار نام یاد نہیں آ رہا، چہرہ تھا کہا تھا کسی نے، یہ کوئی تعلق ہے ڈیلر ڈالا کہ یہ کوئی تعلق ہی نہیں۔ حضرت فرماتے تھے شیخ کا دل ایسے ہاتھ میں لو کہ یہ کہنا نہ پڑے کہ حضرت دعا کر دیں، بلکہ ایسا دل ہاتھ میں لو کہ بغیر کہے شیخ کے دل سے دعا نکلے، بغیر دعا کرائے، دعا کرانا اور شیخ کے دل سے قدرتی طور پہ دعا نکلنا یا دعا دینا ظاہری طور پہ یا غائبانہ، یہ کہلاتا ہے تعلق مع اللہ، یہ کہلاتا ہے شیخ سے صحیح تعلق۔ اللہ جو کچھ بھی بولو کہ اللہ پاک سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں بھائی یہ چار اعمال، پانچ اعمال، یہ دو تین بیانات ہوں اس میں نہیں کی، تو ولی اللہ بنانے والے پانچ اعمال حضرت والا فرما دے، جو بھی انشاءاللہ پانچ اعمال کر لے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ولایت عظمیٰ عطا فرمائیں، یعنی چھوٹی موٹی ولایت نہیں بہت بڑی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پانچوں اعمال کا تعلق فرائض اور واجبات سے، تو پہلے قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر دو، ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، مونچھیں بالکل باریک رکھیں۔ اور تیسرا مل ہے ٹخنوں سپر پائنچے رکھیں، ماں سلم الکاوینگار فنار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور یہ چوتھا جو مل ہے نظروں کی حفاظت کریں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور خواتین کو بھی آپ کہہ دیجئے، آگے اللہ فرماتے ہیں آپ خواتین سے بھی کہیں عورتوں سے، وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور لعن اور رسول اللہ فرماتے ہیں لعن الناظرہ و منظور علیہ، اللہ پاک لعنت فرما جو بد نظری کرے، اور اللہ اس پر بھی لعنت فرما جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے۔ تو نظروں کی حفاظت کریں، تمام نامحرم عورتوں سے، لڑکیوں سے، چلتی پھرتی، موبائل پہ، ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد، سالی، بھابھی، یہ سب نام حریم ہیں، تو ان سے نظروں کی حفاظت کریں۔ اور خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی شرعی پردہ کریں تمام نام حریم مردوں سے۔ اور پانچواں عمل ہے کہ دل کو بالکل پاک صاف رکھیں، گندے خیالات نہ پکائیں، نہیں تو چاروں مال سے نور پیدا ہوگا، تعلق مال اللہ کا ولایت کو ضائع ہو جائے گا، دل کو گندہ کیا۔ دل یہ ہمارا بیت اللہ ہے، دل کو پاک صاف رکھیں، تعلق مال اللہ اسی میں آخر میں پھر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اور ان پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کریں، تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں پانچوں مال کی توفیق ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یا رب کریم، یا رحم الرحیم، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ کہنے سننے میں غلطی کرنے کی شیو کے شان رحمت سے بخش دماغ فرما دے، اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو دے گی رضا کی جو خوشی کی نہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کو کامل تقویٰ نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو مستجاب دعوات بنا دے، اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو کثرت سے قبول فرما دے، یا اللہ یا رحم الرحمین حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ کو جاننے والا ہے ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی آئیں محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے بھی مصیبت زد ہیں اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ایک صاحب کچھ لوگ ہیں وہ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کو جلد از جلد بہترین جگہ اللہ پاک نوکری دلا دے جہاں دین دنیا کی بھلائیں اور عافیتیں ہوں، تمام رکاوٹوں کو بندشوں کو ختم فرما دے، یا اللہ سب کی مالی مشکلات کو دور فرما، اللہ جو اپنے کاروبار سے پریشان ہیں اور ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوئی نظر گزر ہے یا حاصلین کی شر ہے، اللہ تو ہی جاننے والا ہے، تمام شرور کو ختم فرما دے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کو حلال رزق سے غنی فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا ارحم الراحمین، ایک صاحب کا میڈیکل اسٹور نہیں چل رہا، دعا کریں اللہ پاک بہترین طریقے سے اللہ پاک ان کا میڈیکل اسٹور چلا دے، ان کی سیل کو بڑھا دے، ایک صاحب کا ریسٹورینٹ نہیں چل رہا، دعا کریں اللہ پاک بہترین اللہ پاک ان کا ریسٹورینٹ چلا دے، ان کو خوب آڈر عطا فرمائے، سب کو حلال رزق سے غنی فرمائے، یا اللہ دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے، عافیت دارین نصیب فرمائے، یا اللہ ساری حاجتوں کے اوپر ہم تیری حاجت کو اوپر رکھتے ہیں اللہ، بس جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا، اللہ اپنی ذات عطا فرما دے، قرب خاص عطا فرما دے، آپ سے سلم کا قرب، آپ سے ان کی محبت سنتوں پر اعمال عطا فرما دے، اللہ بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ وہ طلب طلب کے شہید ہو رہے ہیں اللہ بھوک سے ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، یا اللہ جو 50-60 کشتیاں گئی ہوئی ہیں کھانا وغیرہ لے کے اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرما، ان کشتی والوں کی حفاظت فرما، اللہ ہر طرح کی یہودی خبیصوں کی سازشوں سے اللہ پاک ان کی شر سے ان کشتی والوں کی حفاظت فرما، کھانے پینے کے سامان کی حفاظت فرما، اور عافیت عزت کے ساتھ اللہ فلسطینیوں تک سب تک کھانا پہنچا دے، اللہ سیکیورٹی عطا فرما دے، غیبی مدد فرما اللہ پاک امت مسلمہ کے دل میں ڈال دے، اللہ اسلامی مالک کے دل میں ڈال دے، ان کو پروٹیکشن دے، اللہ پاک اپنی افواج کو بھیجیں ان کی حفاظت کے لیے، اور سیکیورٹی میں اللہ پاک اس کھانے کو تقسیم کروا دے، اللہ پاک خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما، اور جو بھی یہودی اور ان کے مددگار ہیں اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، عبرت کا نشان بنا دے، تباہ برباد کر دے، تمام مسلموں کی امت مسلمہ کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت فرما، علماء اور مشائخ مساجد کی مدارس کی اور اللہ پاک تبلیغی مراکز کی خانقاہوں کی اور اہل اور جتنے بھی دینی شعبے جا شعبہ جات ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین مہنگائی کے عذاب کو ختم فرما دے، پیٹرول کے ریٹ کو کم کر دے، ٹیکسیز کے نظام کو اللہ پاک بالکل ہلکا کر دے، اللہ پاک مہنگائی سے امت کی کمر ٹوٹ رہی ہے، اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ پانی بجلی کی بہت لوگ شکایت کرتے ہیں، اللہ پاک پانی بجلی وافر مقدار میں عطا فرما، گیس کو اچھے طریقے سے بحال فرما دے، دین دنیا کی دولتیں ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور ہمارے مرشدین کی اور ہمارے جملہ محرومین کی کل مومنین مومنات کی کل جنات کی اور میرے ساس سسر کی سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہم آمین سبحان بنا تک 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 ت